सामने देख कर भी नहीं पहचान पाते। दुर्योधन ने कहा अगर ये स्वयं भगवान भी हैं तो भी मैं सुई के नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा, मैं इनसे युद्ध करूंगा। ये अभक्तों के गुण हैं, लक्षण हैं, कहना चाहिए कि अभक्तों के आभूषण हैं। भक्तों के आभूषण होते हैं, आभूषण का अर्थ समझते हैं आप लोग, गहने, जो स्त्रियां गहने पहनती हैं, मराठी में क्या बोलते हैं आभूषण, दागिने। तो जो भक्त दागिने पहनते हैं, भक्तों के दागिने क्या हैं, आभूषण क्या हैं भक्तों के, तिलक कंठी माला तो है, ये तो है, लेकिन भक्ति भक्तों का आभूषण है। अगर तिलक धारण किया, कंठी धारण की, धोती कुर्ता पहना, सर शेव किया और भक्ति नहीं की तो कोई लाभ है? भक्तों का आभूषण है भक्ति, और अभक्तों का आभूषण है द्वेष, भगवान से द्वेष। दुर्योधन बहुत द्वेष करता था पांडवों से, कृष्ण से, इसलिए साक्षात जब कृष्ण सामने आए, एक शांति दूत बनकर उसके द्वार पर आए, सोचिए कितना बड़ा भाग्य है दुर्योधन का। हम लोग हमेशा दुर्योधन को कोसते हैं कि दुर्योधन ने ये किया, दुर्योधन ने वो किया, दुर्योधन बहुत बुरा था, लेकिन दुर्योधन का कितना बड़ा भाग्य है कि स्वयं कृष्ण उसके द्वार पर आए एक पांच गांव मांगने के लिए। भले ही वो अपने भक्तों के लिए आए थे, अपने भक्तों के प्रेम के वश में होकर वो पांच गांव मांगने आए थे, वो कृष्ण जो सारी सृष्टि के मालिक हैं, सारे ब्रह्मांड के मालिक हैं, सारे ब्रह्मांडों के रचयिता हैं, असंख्य असंख्य ब्रह्मांड जिनके शरीर से निकलते हैं, वो केवल पांच गांव मांगने आए थे एक अभक्त, एक द्वेषी व्यक्ति के द्वार पर, केवल भक्तों के प्रेमवश। पांडवों से बहुत स्नेह था उन्हें, बहुत प्रेम करते थे पांडवों से, और पांडवों ने उन्हें अपने स्नेह से जीता था। श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि इस बात का वर्णन करते हैं, वो बताते हैं कि किन किन भक्तों ने भगवान की कृपा किस किस तरह प्राप्त की है। गोपिया कामाद भयात कंसो, गोपियों ने काम के द्वारा, भया कंस ने भय के द्वारा, द्वेषा चेदादया नृपः, शिशुपाल आदि राजाओं ने द्वेष के कारण, वृष्णियों ने संबंध के कारण, संबंधनात् वृष्णया स्नेह यूयम। युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं कि आप लोगों ने स्नेह के कारण कृष्ण का प्रेम, कृष्ण की कृपा प्राप्त की है। तो इतना स्नेह था कृष्ण को। तो ऐसे अभक्त कृष्ण अगर सामने भी होते हैं तो उन्हें देख नहीं पाते हैं। और फिर आजकल के समय में जब कृष्ण अपनी प्रकट लीला समाप्त करके जा चुके हैं, ऐसे लोगों के लिए कृष्ण के विषय में जान पाना बहुत कठिन है। कृष्ण अपने आप को ढक लेते हैं, इसीलिए एक भक्त प्रार्थना करते हैं कृष्ण से कि हे कृष्ण, ये जो सामने करोड़ों करोड़ों सूर्य के समान रोशनी है, ये जो ज्योति है, कृपया इसको हटाइए सामने से ताकि मैं आपका दर्शन कर सकूं। ये भक्तों का भाव है। लेकिन जो अभक्त हैं, जो अज्ञानी हैं, वो कृष्ण को नहीं देख पाते हैं। इसीलिए यहां पर अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, कथम विद्याम अहम योगिन, हे योगी मैं किस तरह आपका निरंतर चिंतन करूं। तो उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो लोग सामान्य लोग हैं, भगवान के विषय में जानना चाहते हैं या जान नहीं सकते हैं। अगर हम लोग भगवान के विषय में जानना चाहें तो कैसे जानेंगे? भगवान अपने आध्यात्मिक रूप में तो हमारे सामने प्रकट नहीं हुए हैं, हम लोग तो कह देख नहीं रहे हैं कि कहां भगवान चल रहे हैं। जहां अर्जुन के साथ बात कर रहे थे और युधिष्ठिर के साथ रहते थे, दुर्योधन के द्वार पर गए, विदुर से वार्ता की, कहां है भगवान? तो भगवान जानते हैं कि हमारी दृष्टि अभी उनके दिव्य दर्शन करने के योग्य नहीं है, इसीलिए भगवान हमारे सामने उस रूप में प्रकट होते हैं जिस रूप को देखने की शक्ति हमारे अंदर है। हम किस रूप को देख सकते हैं? एक भौतिक रूप को। क्या हम में शक्ति है हम किसी आध्यात्मिक रूप को देख सकें, आध्यात्मिक चीज का चिंतन कर सकें? इसलिए भगवान एक भौतिक वस्तु के रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। लेकिन जब यह वस्तु भगवान से संबंधित हो जाती है तो वो दिव्य हो जाती है। भगवान अर्च विग्रह के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं, भगवान अपने नाम के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं, भगवान अपनी लीलाओं के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। कितनी कृपा भगवान बरसाते हैं, क्या क्या नहीं दिया भगवान ने हमें, केवल एक कारण से कि हम उनका स्मरण कर सकें, हम उनका चिंतन कर सकें। भगवान ने वेद दिए, भगवान ने शास्त्र दिए, भगवान ने इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं की। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमास्थितः भजते तादृशीं क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। ऐसे दयालु भगवान हैं कि वे केवल लीला इसीलिए करते हैं कि जिसको सुन सुनकर या श्रुत्वा जिसको सुनकर तत्परो भवेत्, मनुष्य का जीवन सफल हो जाए। ये कार्य भगवान करते हैं, ये कृपा भगवान करते हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि हम लोग अपने जीवन में अपने इस भौतिक अस्तित्व में या इस भौतिक शरीर में इतने व्यस्त हैं, हम लोग केवल यही चीजों की लालसा करते हैं, इसलिए भगवान केवल वही चीजें प्रकट करते हैं हमारे सामने। कोई व्यक्ति अगर भगवान से धन मांगता है, ऐश्वर्य मांगता है, रूप मांगता है, भगवान केवल वही प्रकट करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भगवान से उनकी भक्ति मांगता है तो भगवान तुरंत उसे भक्तों का संग प्रदान करते हैं जिससे वो भक्ति कर सके, भगवान की शरण जा सके। इसलिए हमें जब भगवान को देखना है, जब भगवान को जानना है, तो उनसे क्या मांगना चाहिए? एक बहुत सुंदर भजन है श्री भक्ति विनोद ठाकुर का, हम लोग इस भजन को गाएंगे। पेज नंबर 54 पर है। प्रभु तव पर मोर निवेदन, प्रभु तव पद जगे मोर निवेदन, प्रभु तव पदे मोर निवेदन, नहीं मगे देह सुख विद्या धन ज्ञान, नहीं मगे स्वर्ग मोक्ष, नहीं मगे न करे प्रार्थना को न बुझे तीर लागे, बुझे कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाया,
जन जन जे नातव नम गुण गाया मात्र आशा मम तुमर चरणे मात्र तुमर चरण अह तुके भक्ति हृदय जगे अनुक्षणे तुके विषय जीतिये अक्षय अमार विषय श्रीमत प्रीति होक चरण तुम्हारा विपद संपदे तहां ठाकुर समुभावे विपद सम दिन दिन वृद्धि है मंदिर प्रभावे पक्षी हाय ताके सर्वे वाणी रे पशु पक्षी तव भक्ति रहु भक्ति दिन दर्द जुदे मोर निवेदन प्रभु तब जुदे मोर निवेदन
प्रार्थना कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर कि हे प्रभु आपके चरणों में मेरा एक निवेदन है, मुझे देह सुख नहीं चाहिए, मुझे विद्या नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, ना ही मुझे स्वर्ग चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए और ना ही कोई सिद्धि की लालसा है मुझे। अपने पूर्व कर्मों के अनुसार जिस भी तरह का शरीर मुझे मिले उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन जन्मे जन्मे जेनु तब नाम गुण गाया, हर जन्म में आपके नामों का गुणगान करने का अवसर मिले मुझे, यही मेरी एकमात्र आशा है आपके चरणों में कि मेरे हृदय में अहेतु की भक्ति जागृत हो। और आज जो प्रीति, जो आसक्ति, जो रुचि मुझे इंद्रिय विषयों में है, विषय जे प्रीति एबे आछय आमार, वही प्रीति आपके चरणों के प्रति मेरी हो जाए, ऐसी प्रार्थना मैं आपसे कर रहा हूं। और अंत में कहते हैं कि मुझे कोई भी शरीर दीजिए, कोई भी जन्म दीजिए, पशु पक्षी का दीजिए, स्वर्ग में रखिए, नरक में रखिए, मुझे कोई चिंता नहीं है, केवल मेरे हृदय में आपकी भक्ति बनी रहनी चाहिए। ये प्रार्थना हमें भगवान से करनी चाहिए, ये हमें मांगना चाहिए, तब भगवान हमें दिखेंगे, तब हम भगवान को जान पाएंगे, तब हम ये जान पाएंगे कि किस तरह भगवान जब यहाँ पर आकर अपनी लीलाएं करते हैं तो किस तरह से हम उन लीलाओं का श्रवण करके हम उनको समझ सकते हैं। ये अगले श्लोक में बता रहे हैं अर्जुन कि उनकी लीलाओं का क्या महत्व है। तो श्लोक क्रमांक 18 हम लोग पढ़ेंगे।
विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिः शृण्वतो नास्ति मे मृतम्।
अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। हे जनार्दन, आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें, मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूं, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूं उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूं। यहां पर अर्जुन वर्णन कर रहे हैं भगवान से कि आप और वर्णन कीजिए अपने ऐश्वर्य का, अपनी शक्तियों का, अपने विषय में और बताइए, क्योंकि आपके विषय में सुनकर मेरा मन कभी तृप्त नहीं होता। ये भक्तों का भाव है। श्रीमद् भागवतम में जब विदुर मैत्री मुनि से मिलते हैं तो वो भी उनसे यही कहते हैं। वो कहते हैं क्रीड़न विदत्ते द्विजगोसुराणां क्षेमाय सर्व कर्माणि भेदे मनोन तृप्त्यत्युतिशृण्वतानां सुश्लोकमूलेश्वरितामृतानि। वो कहते हैं क्रीडन विदत्ते द्विजगो सुराणाम क्षेमाय कर्माणि अवतार भेदे। वो कह रहे हैं मुनि, मुझे भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन करके सुनाइए, बताइए भगवान के कौन कौन से अलग अलग अवतार हैं, कौन कौन सी लीलाएं हैं उनकी, क्या क्या किया है भगवान ने। क्यों बताना, क्यों पूछ रहे हैं? मनोन तृप्त्यति शृण्वताम ना, मेरा मन कभी तृप्त नहीं होता इन कथाओं को सुनने से। हमें अपने कानों को एक ऐसा सागर बनाना चाहिए, समुद्र बनाना चाहिए, जिसमें कृष्ण कथा की नदियां जितनी भी जाएं वहां पर कभी भी नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगे। समुद्र में देखा है आप लोगों ने, बहुत सारी नदियां होती हैं, जाती रहती, गिरती रहती है निरंतर, लेकिन समुद्र ये कभी नहीं कहता कि बस अब और नहीं, जगह नहीं है। तो हमारे कान ऐसे समुद्र के समान होने चाहिए, कृष्ण कथा निरंतर उसमें प्रवाहित होनी रह चाहिए और सदैव हमें और इच्छा होनी चाहिए। मनोन तृप्त्यति शृण्वताम ना, उनकी कथाओं को, उनकी लीलाओं को, कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, यही हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, यही एक कार्य होना चाहिए। जहां भी हो हमें कृष्ण का श्रवण करना चाहिए। यहां अर्जुन भी कह रहे हैं, हालांकि अर्जुन सदैव कृष्ण के संग में रहते हैं, सदैव कृष्ण का संग पा रहे हैं, उनके सानिध्य में हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि आप अपने बारे में बताइए, आपकी कथा सुनने में मुझे आनंद आता है, श्रवण करने में बहुत आनंद आता है। भक्ति ये दो प्रकार से की जा सकती है। एक तो होती है मिलन की भक्ति, संभोग कहते हैं जिसे, और दूसरी विप्रलंब भाव, वियोग की भक्ति। जब कृष्ण के सानिध्य में रहते हैं, जब कृष्ण के संग में रहते हैं, तो उसे मिलन की भक्ति या संभोग की भक्ति कहते हैं, अर्थात कृष्ण के साथ में है, वो भी भक्ति है। लेकिन जब कृष्ण से वियोग होता है, कृष्ण से दूर रहते हैं, कृष्ण के विरह में रहते हैं, तो उसे विप्रलंब की भक्ति कहते हैं, वियोग की भक्ति कहते हैं। वैसे भक्ति मार्ग में चाहे वियोग हो या मिलन, इन दोनों में कोई कष्ट नहीं होता। साधारण दृष्टि में हम लोग भौतिक जगत में यहां पर देखते हैं कि अगर हम किसी को बहुत चाहते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, जैसे माता अपने पुत्र से प्रेम करती है, तो अगर उसका पुत्र कहीं चला जाता है तो माता को बहुत कष्ट होता है, उसको आनंद नहीं आता है। समझिए किसी माता का एक छोटा सा बालक है 5-7 साल का, वो कहीं खो गया, तो उस माता की क्या स्थिति होती होगी। हमने ऐसे 2-3 उदाहरण, अभी पिछली हमारी जब रथ यात्रा हुई थी तो उस समय हमें ध्यान है कि एक किसी को एक माता जी आई थी, उनकी एक छोटी सी बच्ची खो गई थी, 3-4 दिन नहीं मिली थी कि कुछ ज़्यादा दिन बाद में मिल गई थी। तो उनकी क्या दशा थी, क्योंकि बहुत आसक्ति होती है तो बहुत कष्ट होता है। लेकिन भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है केवल आनंद कंद। अगर कृष्ण है तो आनंद है, कृष्ण नहीं है उनसे विरह है तो भी आनंद है। और कृष्ण बताते हैं श्रीमद् भागवतम में, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम का। श्रीमद् भागवतम का शायद ये एक ही ऐसा श्लोक है जो 2 बार कृष्ण ने कहा है, पूरा का पूरा श्लोक वैसे का वैसा ही, एक भी शब्द बदला नहीं है। आप लोग जानते हैं कौन सा श्लोक है? 2 बार कृष्ण ने कहा है। आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण होगा, कृष्ण कभी कोई बात 2 बार कहते हैं शास्त्रों में? भगवद गीता में एक ही श्लोक उन्होंने 2 बार कहा है, कौन सा? मन मना भव बद भक्त, इसलिए उसको भगवद गीता का सार माना जाता है, क्योंकि कृष्ण ने 2 बार कहा है इसको, बहुत महत्वपूर्ण है क्या करना चाहिए। ऐसा ही एक श्लोक श्रीमद् भागवतम में आता है, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में ही कृष्ण ने ये श्लोक 2 बार कहे हैं, एक ही श्लोक, और उसमें इस महत्वपूर्ण तथ्य को स्वयं कृष्ण हमारे सामने प्रकट करते हैं। ये प्रसंग उस समय का है जब भगवान कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ जंगल में गाय चराने गए और उनको उस समय भूख लगी। कृष्ण ने अपने मित्रों से कहा कि पास ही में कुछ ब्राह्मण हैं जो यज्ञ कर रहे हैं, कृपया आप उनके पास जाइए और थोड़ा मेरे लिए भोजन मांगिए, कहिए कि कृष्ण और बलराम यहाँ पर हैं पास ही में और हमें बलराम जी ने भेजा है और हम थोड़ा सा भोजन उनके लिए चाहते हैं, वो लोग भूखे हैं। हम लोग कथा जानते हैं कि किस तरह फिर ग्वाल बाल गए और ब्राह्मणों ने ध्यान नहीं दिया और फिर से ग्वाल बाल निराश होकर वापस आए। कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं, इस बार तुम उनकी पत्नियों के पास जाओ जो उनको यज्ञ में सहयोग करने के लिए कार्य कर रही हैं, और उनसे जाकर कहो कि कृष्ण और बलराम पास ही में खड़े हैं, आए हैं, उन दोनों को भूख लगी है और कृष्ण ने हमें भेजा है। तो जब ग्वाल बाल ब्राह्मण पत्नियों के पास पहुंचे और उन्होंने जैसे ही सुना कि कृष्ण आए हैं तो उनको अपना होश ही नहीं रहा। उन्होंने पहले कभी कृष्ण को देखा नहीं था, वो जानती नहीं थी कृष्ण को, ऐसा नहीं था कि वो बहुत अच्छी तरह से कृष्ण को जानते थे, उनके रिश्तेदार थे, उनके घर में आना जाना था, उनसे हाय हेलो करते रहते थे, फोन पर बात करते थे, ऐसा नहीं था। कृष्ण को उन्होंने देखा भी नहीं था, कृष्ण को जानते नहीं थे, केवल कृष्ण के विषय में सुना था ऐसे लोगों से, किसी मालन से जो फूल बेचने आया करती थी। वो फूल बेचने के लिए घर घर जाती, कृष्ण के घर भी जाती और ब्राह्मण पत्नियों के घर भी आती, और ब्राह्मण पत्नियों के घर पर आकर वो बताती कि कृष्ण कैसे दिखते हैं, कृष्ण कैसी लीलाएं करते हैं, कृष्ण कितने आकर्षक हैं, कृष्ण कितने सुंदर हैं। और इसको सुन सुनकर केवल ब्राह्मण पत्नियों के हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हुआ। और आज जब उन्होंने सुना कि कृष्ण आए हैं और वो भूखे हैं, उन्हें भोजन चाहिए, तो इन्हें अपने घर, अपने परिवार, अपने पति, अपने बच्चों, किसी की होश नहीं रही, किसी की खबर नहीं रही। उन्होंने तुरंत जो सामान, सारी सामग्री, सारा जो भोजन बनाया था यज्ञ में अर्पित करने के लिए, तुरंत उसे उठाया और भागी वो उस स्थान की ओर, वन की ओर, कृष्ण के दर्शन के हेतु। इतनी तीव्रता उनके हृदय में थी केवल कृष्ण का श्रवण करने से, कृष्ण के बारे में सुनने से ये तीव्रता उनके हृदय में आ गई थी। उन्हें किसी चीज की सुध नहीं रही, अपने आप की भी सुध नहीं रही, वो कैसी है, किस स्थिति में है, उन्होंने कुछ नहीं देखा, तुरंत भागी और सब कुछ लेकर जब वो कृष्ण के सामने आई, कृष्ण को उन्होंने अर्पण किया और कृष्ण से उन्होंने प्रार्थना की कि हे कृष्ण, हम अब सब कुछ छोड़कर आ गई हैं। इन भक्तों का स्तर क्या था ये इनके ही शब्दों से पता चलता है। वो बतलाते हैं कि हे कृष्ण, आपके लिए हम अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने पति, अपने समाज सबको त्याग कर आई हैं, केवल आपके चरण कमलों का आश्रय हमने लिया है। लेकिन कृष्ण उन्हें क्या कहते हैं? कृष्ण ने कहा, बहुत अच्छा है आप आए हैं, आप मेरे लिए ये सब लाए हैं, मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूं और मैंने ये सब स्वीकार किया है, अब आप वापस जाइए। जैसे ही कृष्ण ने ये कहा, ऐसा लगा उन्हें कि उनके हृदय पर बिजली टूट गई है। कृष्ण से मिलन की उनको इतनी तीव्रता थी कि वो इसको सहन नहीं कर पाए कि कृष्ण उन्हें कह रहे हैं कि अब आप चले जाइए। कृष्ण उन्हें कहने लगे कि ये एक सभ्य स्त्री के लिए अच्छा नहीं है कि वो अपने परिवार को, अपने पति को, अपने बच्चों को छोड़कर आए, इसलिए अब आप लौट जाइए। ठीक है, आप लेकर आई हैं जो सामग्री, मुझे मैं प्रसन्न हो गया, अब आप जाइए। क्या स्थिति हुई होगी उन ब्राह्मण पत्नियों की जिन्होंने काफी समय से कृष्ण के विषय में सुना था, तीव्र प्रेम उनके हृदय में कृष्ण के लिए था, आज वो कृष्ण के दर्शन कर रही थी, अपना सर्वस्व उन्हें सौंपना चाहती थी और कृष्ण उनसे कह रहे थे कि आप चले जाइए। तो वो कृष्ण से कहने लगी कि हे कृष्ण, आप ही कहते हैं कि जो मेरे प्रति जैसा भाव रखता है मैं उसके साथ वैसा ही आदान प्रदान करता हूं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। वो कहने लगी, आप ही तो ये कहते हैं कि आप आदान प्रदान करते हैं, ये कैसा आदान प्रदान है, हम सब कुछ छोड़कर आए हैं आपके लिए और आप हमें कह रहे हैं कि हम चले जाएं, हम आपसे मिलना चाहते हैं और आप हमें विरह में डाल रहे हैं, ये कैसी कृपा है आपकी। उस समय भगवान कृष्ण ये महत्वपूर्ण श्लोक भागवतम का कहते हैं, श्रवणाद् दर्शनाद् ध्यानाद् मयि भावानुकीर्तनाद् न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात् ततो ग्रहान्। भगवान कहते हैं, दर्शनाद् मेरे दर्शन से, श्रवणात् सबसे पहले भगवान कहते हैं श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात्। उनसे कहने लगे कि आप व्यर्थ चिंतन कर रही हैं, आप ये ना सोचिए कि मैं आप पर कृपा नहीं कर रहा हूं, ये सबसे बड़ी कृपा आपके ऊपर कर रहा हूं। कैसे? श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात्। भगवान कहते हैं कि मेरी भक्ति कैसे बढ़ती है, कोई मुझे कैसे पा सकता है, मेरी भक्ति में तीव्रता कैसे ला सकता है, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भावानुकीर्तनात्। ये चार चीजें भगवान बताते हैं। क्या क्या बताया भगवान ने? पहला श्रवणात्, दूसरा तीसरा, चौथा भावानुकीर्तनात्, दर्शनात्, श्रवणात्। सबसे पहले मेरे बारे में श्रवण करो। गोपियां भी गोपी गीत में बताती हैं कि केवल भगवान के बारे में श्रवण करने मात्र से व्यक्ति का मंगल हो जाता है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम कल्मशापहम। श्रवण मंगल से जितना भी हम श्रवण करते हैं व्यक्ति का मंगल हो जाता है, सारे पापों से वो दूर हो जाता है। तो यहां पर भी भगवान बताते हैं श्रवणात्, फिर वो कहते हैं दर्शनाद, अर्थात सबसे पहले कहते हैं मेरे बारे में श्रवण करो, दूसरा दर्शनाद, मेरे दर्शन करो। ये बहुत विचित्र बात है ना, भगवान कहते हैं मेरे से दूर चले जाओ और फिर कह रहे हो मेरा दर्शन करो, संभव है? अभी अभी भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों से कहा कि आप घर चले जाइए, मेरे साथ में मत रहिए, और फिर कह रहे हैं श्रवणात मेरे बारे में सुनिए। ठीक है, भगवान से अलग रहकर उनके बारे में सुना जा सकता है, दर्शनात, अब दर्शन कैसे करेंगे, भगवान तो नहीं है, अगर वो अपने अपने घर चली गई तो कृष्ण तो यहां रहेंगे, वो वहां रहेंगी, दर्शन कैसे होगा। लेकिन फिर भी भगवान उनको कह रहे हैं श्रवणात, दर्शनात, ध्यानात। भगवान ये बता रहे हैं, आगे के लाइन में बताते हैं कि इन चार चीजों से भक्ति बढ़ती है, श्रवण, दर्शन, ध्यान और कीर्तन। लेकिन कब बढ़ती है ये भगवान अगली लाइन में बताते हैं, न तथा सन्निकर्षेणा। वो कहते हैं ये चार चीजों से केवल भक्ति बढ़ती है, न तथा सन्निकर्षेणा। सन्निकर्षेणा का अर्थ क्या होता है, मेरे पास रहने से भक्ति नहीं बढ़ने वाली है, है? हम लोग सब कहते हैं हमें भगवान का संग चाहिए, भगवान के साथ में रहना है, भगवान के धाम में रहना है, बैक टू गॉड हेड जाना है, भगवान के साथ लीला करनी है। भगवान कह रहे हैं मेरे साथ रहने से भक्ति नहीं बढ़ने वाली है, फिर क्या करना चाहिए हमको? अब भगवान सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? आप लोग जाना चाहते हैं सब, भगवान से मिलना चाहते हैं, हाँ कि ना? सब मिलना चाहते हैं, भगवान कह रहे मेरे पास आओगे तो भक्ति नहीं मिलेगी। न तथा सन्निकर्षेणा, मेरे पास आने से, मेरे संग में रहने से भक्ति नहीं बढ़ती है। क्यों नहीं बढ़ती है? भगवान कहते हैं मेरे विरह में जो भक्ति है, मेरे से दूर रहकर, मेरा श्रवण करकर, मेरे से दूर रहकर मेरे अर्थ विग्रहों का दर्शन करके, मेरे से दूर रहकर मेरा ध्यान करके, मुझसे दूर रहकर मेरा कीर्तन करके जो भक्ति आपको प्राप्त हो सकती है वो मेरे संग में रहकर नहीं हो सकती। कभी कभी हम लोग जब मंदिर में आते हैं या भक्ति में आते हैं, मंदिर में रहने लगते हैं, तो हम लोग भी भक्ति को या भगवान को बहुत सहज ले लेते हैं कि ठीक है, गोकुलानंद जी तो खड़े हुए तो रोज खड़े रहते हैं, सुबह दर्शन नहीं हुए तो दोपहर को हो जाएंगे, दोपहर को नहीं हुए तो शाम को हो जाएंगे, शाम को भी मिस हो गए तो शयन दर्शन तो है ही 8:15, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हम निकट में हैं, भगवान के पास हैं। लेकिन जो लोग जिन्हें प्रेम है भगवान से और वो भगवान से दूर हैं, उनकी तीव्रता कितनी होती है, उस सदैव भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। अभी हम लोग रविवार को आलवारों की कथा में सुन रहे थे कि किस तरह राजा कुलशेखर वो किस तरह भगवान के दर्शन के लिए तड़प रहे थे, वो रंगनाथ में नहीं थे, रंगदेव के पास, रंगनाथ जी के पास नहीं थे, श्रीरंगम में नहीं थे, लेकिन तड़प थी उन्हें, देखना चाहते थे कब जाऊंगा, कब जाऊंगा तिरुपति, कब जाऊंगा भगवान राम से मिलने, कब जाऊंगा, कितनी तीव्रता थी। तो इसीलिए भगवान कहते हैं न तथा सन्निकर्षेण, अच्छा आप मेरे पास मत आओ, दूर रहो मुझसे। लेकिन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सब लोग हम जा भी नहीं सकते हैं भगवान के निकट, इसीलिए भगवान ने अपना नाम दिया है, अपनी कथाएं दी हैं, अपनी लीलाएं दी हैं, ताकि श्रवणात हम श्रवण करें, दर्शनात विग्रह दिए हैं दर्शन करने के लिए, ध्यानात ध्यान करने के लिए अपना एक सुंदर रूप दिया है भगवान ने, और मई भावोनुकीर्तनात भावपूर्ण कीर्तन करना चाहिए भगवान का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कीर्तन भगवान का होना चाहिए, इससे भक्ति जागृत होती है। जो तीव्रता ब्राह्मण पत्नियों में आई भगवान के संग से नहीं आई थी, वो केवल सुन रही थी भगवान के विषय में, तीव्र भक्ति हुई उनकी, बहुत तीव्र भक्ति थी। जब भगवान ने उनसे वापस जाने के लिए कहा था तो उस समय वो कहने लगी कि हे भगवान, हमें यहां पर कहीं पर इस वन में रहने दीजिए, ताकि हो सकता है कभी ऐसा हो कि आपके गले में जो तुलसी की माला है उसको आप कभी ऐसे थक जाएं तो उतार कर उसको फेंकें, अपने पांव से उसको कहीं दूर मार दें और वो ऐसी आपके पांव की जो धूली लगी हुई तुलसी की माला है वो हम लोग अपने सर पर धारण करके यहां पर रह लेंगे, लेकिन हमें यहीं रहने दीजिए। ये प्रेम था, ये भाव है उनका भक्ति का। इस तरह की भक्ति उन्होंने उत्पन्न की भगवान से दूर रहकर। तो आज अगर हम लोगों के समक्ष भगवान उस रूप में नहीं है जिस रूप में अर्जुन के सामने थे, जहां अर्जुन उनसे बात कर रहे थे, कथम विद्याम अहम योगिन, मैं कैसे आपको देख सकता हूं, किस रूप में आपको देख सकता हूं, तो उसका उत्तर है अर्च विग्रह के रूप में हम आप भगवान को देख सकते हैं। इसलिए हमें भागवतम के इस महत्वपूर्ण श्लोक से यह सीखना चाहिए कि हमें भगवान को देखने की आवश्यकता नहीं है, हमें भगवान के पास जाने की इच्छा करने की भी आवश्यकता नहीं है, हमें केवल उनके ध्यान, उनके नाम, उनकी सेवा करने की इच्छा है। इसलिए हमें दर्शनात् श्रवणात् ध्यानात् यही करना चाहिए। बहुत सुंदर श्लोक है, ये सबको याद करना चाहिए ताकि हम लोग बार बार इसको अपने मन में गुनगुनाते रहें। कभी कभी आप लोग पिक्चर देखने जाते हैं, जाते हैं ना, कितने लोग जाते हैं रोज हर शुक्रवार को? अभी हम लोग वैसे हर शुक्रवार को कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए एक कार्यक्रम करते हैं और महीने के हर अंतिम शुक्रवार को एक बड़ा कार्यक्रम होता है जिसमें बहुत सारे विद्यार्थी आते हैं। तो पिछली बार जब हम लोगों ने कार्यक्रम किया था तो भी काफी विद्यार्थी आए थे, कॉलेज में था। तो उसके बाद में हम लोग उन्हें एक पेपर देते हैं जिस पर आप लिखिए कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा वगैरह। तो उसमें से एक विद्यार्थी ने लिखा था कि बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत विचित्र बात है कि आज शुक्रवार है और आज के दिन थिएटर में नई पिक्चर लगती है, लेकिन फिर भी इतने सारे विद्यार्थी यहां पर आए हुए हैं। उसे बहुत आश्चर्य हुआ था। तो आप लोग पिक्चर देखने जाते हैं ना शनिवार शुक्रवार को, आज मंगलवार है, नहीं नहीं तो पिक्चर में जाते हैं तो कोई बहुत अच्छा गाना लगता है, गाना अच्छा लगता है उसको आप गुनगुनाते रहते हैं कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई
दर्शनाध्यानात्मी भावोनुकीर्तना,
ये चार चीजें हमें केवल करनी है। तो इसीलिए इस पद्धति से अगर हम भगवान के भक्ति में लगेंगे, भगवान की सेवा में लगेंगे, तो हम भगवान को देख सकेंगे, भगवान को पा सकेंगे। भगवान को पाने का अर्थ क्या है? भगवान को पाना मतलब क्या है? भगवान आपके साथ आ जाएंगे खेलने के लिए, भगवान आपके साथ घूमने के लिए आएंगे, आपकी मोटरसाइकिल पर बैठकर चलो थोड़ा सा घूम कर आते, एक राउंड लगा कर आते हैं। जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में लगता है तो उसे भगवान का संग प्राप्त होता है। जब कोई व्यक्ति भगवान के नामों का उच्चारण करता है तब उसे भगवान का संग प्राप्त होता है। आप केवल भगवान का नाम लीजिए प्रेम से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ऐसा बताया जाता है कि जहां भी भगवान के नाम का कीर्तन होता है वहां भगवान के शुद्ध भक्त सभी उपस्थित होते हैं, क्योंकि उन्हें आनंद आता है भगवान के नाम को देख। रामायण में भी ये वर्णन है, हनुमान जी वर्णन करते हैं, हनुमान जी का गुणगान किया जाता है कि जहां भी राघव का गुणगान होता है, भगवान श्री रामचंद्र का गुणगान होता है, हनुमान जी वहां उपस्थित होते हैं। जहां कहीं भी ऐसा कीर्तन होता है, बताया जाता था चैतन्य लीला में हम लोगों ने देखा है कि जहां कहीं भी कृष्ण कीर्तन हुआ करता था चैतन्य महाप्रभु स्वयं उपस्थित हुआ करते थे वहां पर। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति भगवान के नामों का उच्चारण करता है तो वो भगवान का संग करता है, वो भगवान को देख सकता है, वो भगवान से आदान प्रदान कर सकता है। तो इसलिए आज का जो प्रश्न अर्जुन ने किया था कि मैं आपका स्मरण किन किन रूपों में कर सकता हूं, तो हम लोग ये जान सकते हैं कि हम भगवान का स्मरण उनके नाम के रूप में, उनकी लीलाओं के रूप में, उनके अर्च विग्रह के रूप में और उनके नामों का कीर्तन करने के रूप में कर सकते हैं। और इस तरह अगर हम लोग भक्ति में लगेंगे तो जैसा भगवान स्वयं बताते हैं कि हमारी भक्ति में तीव्रता आएगी। लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रश्न आता है, हम सब जप भी कर रहे हैं, हम कीर्तन भी कर रहे हैं, मंदिर भी आ रहे हैं, लेकिन रुचि नहीं है। कहां है रुचि? है कृष्ण प्रेम के लिए रुचि, कृष्ण नाम के लिए रुचि? क्या ऐसा होता है कि कृष्ण नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम भावा विभोर हो जाते हैं, हमें अपनी सुध नहीं रहती, हम होश खो बैठते हैं? ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमें कृष्ण प्रेम नहीं है, हमें रुचि नहीं है नाम में। चैतन्य महाप्रभु जैसे बड़े बड़े भक्त वो कहते हैं कि अगर मुझे कृष्ण नाम में रुचि होती तो मैं जीवित नहीं रहता, क्योंकि कृष्ण है ही नहीं, मुझे कृष्ण नाम में रुचि नहीं है, इसलिए मैं कृष्ण के बिना भी जीवित हूं। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान हैं, लेकिन एक भक्त के रूप में आते हैं हमारे सामने। क्या सिखलाने आए हैं हमें चैतन्य महाप्रभु? क्यों आए हैं चैतन्य महाप्रभु? चैतन्य महाप्रभु के आने के कई कारण हैं, लेकिन उनमें से दो प्रमुख कारण बताए जाते हैं। कोई बता सकते हैं क्यों आए हैं चैतन्य महाप्रभु? अरे नाम देने के लिए, और वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेकं पुरुषं पुराणं श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी। ये श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी जो श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में आए हैं, वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, अपनी भक्ति योग सिखलाने आए हैं और वैराग्य विद्या सिखलाने आए हैं। भौतिक आसक्ति से वैराग्य और भगवान के प्रति आसक्ति, हमें पूर्ण रूप से अनासक्त होना है। कई बार जब यह कहा जाता है तो लोग कहते हैं कि कैसे हम किसी चीज से अनासक्त हो सकते हैं, कहीं ना कहीं तो आसक्ति रह जाती है थोड़ी सी। जिनके घर परिवार है वो कहते हैं हम लोग कैसे अपने बच्चों से अनासक्त हो सकते हैं, कोई कहते हैं हम कैसे अपने समाज से अनासक्त हो सकते हैं। अनासक्ति की पूर्णता आसक्ति में है। जब तक कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से आसक्त नहीं होता वो अनासक्त नहीं हो सकता। अर्थात जब तक कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण में आसक्त नहीं होता वो भौतिक भोगों से, भौतिक विषयों से अनासक्त नहीं हो सकता। इसलिए हम लोगों को प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान श्री कृष्ण से उनकी एक एक लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात्, श्रवण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, ध्यान करना चाहिए उनकी लीलाओं का ध्यान। हे भगवान, किस तरह आपने पूतना राक्षसी का वध किया था, मेरे हृदय में भी एक पूतना है, एक बोगस गुरु है जो मुझे ये प्रेरणा देता है कि तुम भोग करो, इच्छा करो, इस भौतिक जगत में बंधे रहो, यही आनंद है, आप इस पूतना का वध कीजिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हे भगवान, हमारे हृदय में एक कालिया है। कालिया किस चीज का प्रतीक है? द्वेष का। जब भगवान कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे थे तो उस समय कालिया के मुख से जहर निकल रहा था। आचार्य समझाते हैं कि यह द्वेष था। तो अगर भगवान कृष्ण को हम अपने हृदय में लाएंगे और कृष्ण हमारे हृदय में आकर उस द्वेष रूपी कालिए के ऊपर नृत्य करेंगे तो हमारे हृदय का भी जो द्वेष है वो निकल जाएगा, विष निकल जाएगा। तो प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से कि हे भगवान, हमारे हृदय के इस कालिए का दमन करो, इसको भगाओ दूर। इस धेनुकासुर, कितने भगवान ने असुरों का वध किया, एक एक लीला का स्मरण करना चाहिए। इस धेनुकासुर को मारो। धेनुकासुर का क्या अर्थ है आप जानते हैं? धेनुकासुर की कथा, एक गधे के रूप में आया था और किसने वध किया था? बलराम जी ने। हाँ, तो गधा किस चीज का प्रतीक है? हम लोग किसे गधा कहते हैं? बुद्धिमान व्यक्ति को गधा कहते हैं कि ये बहुत बड़ा गधा है, ऐसे कहते हैं क्या? नहीं ना। मूर्ख व्यक्ति को गधा कहा जाता है कि ये गधा है, उसको काम करना नहीं आता है, गधे की तरह काम करता है। वैसे कभी कभी गधा ये सुनता होगा तो उसको बहुत नाराज होता होगा, अरे मेरा कितना अपमान कर रहे हैं ये लोग। तो गधे की जैसी बुद्धि जिसकी होती है ऐसा व्यक्ति, उसका भी वध होना चाहिए। और गधे की बुद्धि क्या है? वो जो ये समझता है कि मैं ये शरीर हूं, मैं इस शरीर से आसक्त हूं, मेरे इस शरीर से संबंधित जितने लोग हैं वही मेरे अपने हैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैनिश्च सतस्वपि, ऐसा ही तेषां प्रमत्त निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। तो ये गधे की बुद्धि है। इसलिए भगवान से उनकी एक एक लीला का स्मरण करते हुए ये प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे हृदय में उससे भी बहुत बड़े बड़े असुर हैं, आप थोड़ा आइए हृदय में और थोड़ा साफ सफाई कीजिए। ये सेवा भगवान से करा लेनी चाहिए, क्योंकि हृदय के असुरों को कौन मार सकता है? न, बड़े बड़े असुर हैं उनको भगवान ही मार सकते हैं। तो भगवान को कहना चाहिए कि हमारे हृदय में भी बहुत असुर हैं, कृपया इनका वध कीजिए। और किस लिए? ऐसा नहीं कि इसका वध की इनका वध कीजिए ताकि मैं गोलोक वृंदावन में आकर और वो जो वहां पर कल्प वृक्ष हैं उनके नीचे बैठकर आराम से भोग कर सकूं। नहीं, इसलिए वध कीजिए ताकि मेरा हृदय शुद्ध हो और मैं आपकी सेवा में लग सकूं। यही एक प्रार्थना हम अगर भगवान से करेंगे तो हमारे मनुष्य जीवन को हम लोग सफल कर पाएंगे और सदैव भगवान के निरंतर चिंतन में लग सकेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो भी भगवान के दर्शन होंगे। हम लोगों ने श्रवण किया। भगवान ने कौन सी चार चीजें बताई हैं? श्रवणार्थ दर्शना। हाँ, तो हम लोगों ने श्रवण कर लिया, अब हम भगवान के दर्शन करेंगे। दर्शन के साथ साथ भावोनु कीर्तन, ऐसे कीर्तन मत कीजिएगा आप लोग, भाव के साथ कीर्तन करेंगे और करते करते ध्यानार्थ उनकी गोकुल में की गई लीलाओं का आप स्मरण कीजिए, क्योंकि गोकुल को आनंद देने वाले अब आपके सामने आपको दर्शन देने वाले हैं। हरे कृष्ण। जी अभाव, सहजीय भाव का क्या अर्थ है? सहजीय भाव का अर्थ है भक्ति को सहज ले लेना। अर्थात भक्ति को बहुत सस्ता मानना, बहुत सरल मान लेना, और भक्ति के जो नियम हैं, भक्ति का पालन करने के लिए जो आचार्य पद्धतियां बताते हैं उनको नकार देना, उनको बहुत तुच्छ मानना। जैसे हम लोगों को बताया जाता है कि हमें 16 माला जप करना चाहिए या कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, तो जो सहजीय भाव में व्यक्ति होगा, जो भक्ति को बहुत सहज लेता है, वो कहेगा इसकी क्या जरूरत है, मुझे भगवान के नाम जपने की क्या आवश्यकता है, भगवान तो मेरे साथ बैठकर रोज भोजन करते हैं, तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं तो उस स्तर पर हूं जहां मैं भगवान को देखता हूं, मैं उनसे आदान प्रदान करता हूं, तो मुझे नियम पालन करने की क्या जरूरत है। तो ऐसी सारी चीजों को वो लोग मानते हैं, यानी भक्ति को बहुत सहज ले लेते हैं, बहुत सस्ता मानते हैं। तो इसे सहजीय भाव कहते हैं। जो भक्ति को समझते नहीं हैं, भगवान को समझते नहीं हैं, एक प्रामाणिक परंपरा में आकर भक्ति के तत्व को नहीं जानते हैं और केवल कहना चाहिए कि एक दिखावा करते हैं, तो ऐसे लोग सहजिया कहलाते हैं, वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, और कोई प्रश्न? कि भक्ति में आने के बाद भी क्या देवी देवताओं की पूजा करना ठीक है, आपको क्या लगता है? बस तो फिर क्या भक्ति में आने के बाद भी देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए कि नहीं? अगर कोई भगवद गीता पढ़ लेता है, भगवद गीता समझता है और भगवान को समझता है, कृष्ण को समझता है, और ये समझता है कि जड़ को पानी दे देने से पेड़ों के पत्तों को, टहनियों को, फूल को, फूलों के अंदर जो उसके और बीज हैं उनको पानी देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा समझ लेता है, तो वो फिर देवी देवताओं की आराधना या पूजा नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई भक्ति में आया है, आज ही हम लोग सुन रहे थे कि अगर भक्ति में भी है, यहाँ भी है और वहाँ भी है, थोड़ा बहुत इधर उधर आधा आधा, तो वो कभी स्थिर नहीं हो पाएगा भक्ति में, भगवान को नहीं जान पाएगा। भक्ति का मतलब उसको कहना चाहिए कि वो भक्ति में है ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति आप कहते कि भक्ति में आने के बाद देवी देवता, तो भक्ति में कैसे है? भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान की सेवा। और ये जान लेना कि भगवान परम है, तब तो भक्ति शुरू होती है, नहीं तो भक्ति हुई कहाँ है? तब तक तो व्यापार चल रहा है भगवान से। तो इसलिए भक्ति का अर्थ, भक्ति केवल कृष्ण के लिए की जाती है, देवी देवताओं से व्यापार किया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर आए भी हैं, भक्ति मार्ग पर आने का प्रयास कर रहे हैं, तो उन लोगों को भगवद गीता के श्लोकों को ध्यान से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए कि किस किस तरह भगवान ने बताया है कि जो देवी देवता होते हैं उनका क्या स्तर है और भगवान का क्या स्तर है। ठीक है, प्रश्न ऐसा है कि देवी देवताओं की पूजा करने के लिए हम मना कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रवचनों में कहा जाता है, प्रवचनों में नहीं, हम लोग तो रोज करते हैं सुबह, तुलसी की पूजा आप लोग क्यों करते हैं? तुलसी कोई देवी देवता नहीं है, तुलसी भगवान की भक्त हैं। हम उनको एक भक्त के रूप में उनकी, वो भगवान की सबसे प्रिय भक्त हैं, भगवान की बहुत निकट के भक्त कहना चाहिए, प्रिय भक्तों में से हैं। भगवान जब तक भोग में तुलसी का दल ना हो उसको स्वीकार नहीं करते हैं, तो ऐसा उनका प्रेम है तुलसी के प्रति, इसीलिए हम लोग तुलसी को इतना महत्व देते हैं, केवल एक कारण से कि वो कृष्ण को प्रिय है। वृंदावन तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च। हाँ, अगर कोई व्यक्ति देवी देवताओं को केवल ये सोचकर कि वो भगवान के सेवक हैं, अगर उनको आदर सम्मान देता है तो उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन अगर उनको परम मानकर उनकी पूजा करता है तो वो गलत है। हम लोग तुलसी को परम नहीं मानते कि तुलसी भगवान है, ऐसा नहीं कहते हैं, लेकिन बाहर जो भक्ति करते हैं तथाकथित, कहते हैं गणेश ही भगवान है, शिव ही भगवान है, ब्रह्मा ही भगवान है, तो ऐसा जो कहता है वो गलत है। लेकिन अगर कोई ये जानता है कि हाँ शिव जी हैं, वो परम वैष्णव है, तो हम लोग भी कहते हैं, आपने प्रवचनों में सुना होगा वैष्णवानाम यथा शंभु, तो हम भी कहते हैं। तो अगर कोई ये मानकर उनका आदर सम्मान करता है तो उसमें कोई गलती नहीं है। इसलिए बताया जाता है कि देवी देवताओं का आदर सम्मान होना चाहिए, लेकिन आराधना अर्थात पूजा ये केवल भगवान की होनी चाहिए। तो हम लोग पूजा भगवान की भगवान मानकर करते हैं, बाकी सबका आदर सम्मान हमें भक्तों का क्या, हमें तो एक साधारण जीव का भी मान सम्मान करना चाहिए। फिर देवी देवता तो बहुत बड़े स्तर पर है। हाँ, कहा था गायत्री मंत्र तप कीजिए, तपस्या की थी। अगर कृष्ण ब्रह्मा जी को कह रहे हैं कुछ करने के लिए और ब्रह्मा जी कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या ये हो गया कि कृष्ण उनको मान रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं, कृष्ण ने क्या बोला, किसको कृष्ण ने बोला? हाँ फिर, हाँ तो कृष्ण ने ब्रह्मा को बोला, ये तो आप जान रहे। नहीं, आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है। भागवतम में सीधा साफ बताया जाता है कि ब्रह्मा जी को दो शब्द सुनाई दिए, तप, और उन्होंने तपस्या की। तपस्या किसकी करेंगे? वो अपनी तो करेंगे नहीं, अपने से हायर अथॉरिटी की करेंगे, भगवान की करेंगे। तो उन्होंने, भगवान ने तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, ब्रह्मा जी को हृदय में ज्ञान दिया कि आप मेरी भक्ति करो। तो इसका अर्थ क्या है, ब्रह्मा जी कहां है, भगवान कहां है? तप शब्द था, तपस्या करो, तो बोलिए तपस्या की, तो तपस्या किसकी करेंगे? ओम क्या है? ठीक है, चलिए ओमकार की करेंगे। ओमकार क्या है? नहीं नहीं, एक मिनट, हम लोग शॉर्टकट में लेते हैं। आप कह रहे हैं कि, वैसे उन्होंने यही कहा, हम आपकी बात मान लेते हैं, उन्होंने कहा कि ओम की तपस्या करो। ओम क्या है? ओम क्या है? नहीं नहीं, वो बात की बात है, आप हमें पहले बताइए ओम क्या है। ओम किसे कहते हैं? भगवान को बोलते हैं। अगर उन्होंने कहा ओम की तपस्या करो, वैसे नहीं कहा, लेकिन अगर कहा तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ, तब उसकी तपस्या करने को कहा। नहीं, मंत्र कुछ भी बन सकते हैं आगे चलकर। वैदिक मंत्र ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न होते हैं। ये जो वेदों के मंत्र हैं, ये कहां से आते हैं? आप कह रहे हैं ब्रह्मा जी बनाते नहीं हैं। ब्रह्मा जी कुछ बना नहीं सकते हैं, उनकी शक्ति नहीं है। ब्रह्मा के मुख से ये वेद प्रकट होते हैं, लेकिन ये वेद ब्रह्मा जी के मुख में कहां से आए? भगवान जब मुरली बजाते हैं तो उनकी मुरली की ध्वनि से वेद उत्पन्न होते हैं। जब नरसिंह देव दहाड़ते हैं तो उनके दहाड़ने से उनके शरीर से वेद उत्पन्न होते हैं, ऐसे वर्णन शास्त्रों में किया गया है। तो वेद ये भगवान की वाणी है, केवल ब्रह्मा जी के माध्यम से हम तक आते हैं। तो ये जो गायत्री मंत्र या और कोई भी मंत्र आप कह रहे हैं, वैसे जो आप गायत्री कह रहे हैं, एक प्रकार की गायत्री कह रहे हैं जिसे ब्रह्म गायत्री कहते हैं, ऐसे बहुत सारी गायत्रियां हैं, गायत्री मंत्र हैं। गायत्री का अर्थ होता है एक प्रकार से बोलने का तरीका। गायत्री एक मंत्र नहीं है। ये लोगों में गलत भावना है, धारणा है कि गायत्री एक ही मंत्र है जिसको सारे समाज में कैसेटों में घुमाया जाता है। वो गायत्री है, लेकिन वो एक प्रकार का गायत्री, ऐसे कई प्रकार के गायत्री हैं। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने उसको नहीं बनाते हैं, ब्रह्मा जी ने कोई वैदिक मंत्र बनाया नहीं है, ब्रह्मा जी के माध्यम से भगवान उसे प्रकट करते हैं। तो इसलिए इस बात से भी ये स्पष्ट होता है कि भगवान श्रेष्ठ है। सारे वेद प्रकट किए ना भगवान ने, ब्रह्मा जी के माध्यम से सारे वेद प्रकट किए, ज्ञान प्रकट किया, ताकि हम लोग उस ज्ञान को पढ़ें और उसको सीखें। तो यही बतलाना चाहते थे भगवान। ठीक है, पहले पहला प्रश्न है कि अनासक्ति की पूर्णता आसक्ति में है, कृपया इसको समझाइए। आप लोग सुनना चाहते हैं पूरे विस्तार में, लेकिन हम आज ज्यादा देर नहीं करेंगे। अनासक्ति भौतिक चीजों से तब हो सकती है जब हम भगवान के प्रति आसक्ति को बढ़ाएं। जब तक हम अपनी आसक्ति कृष्ण में नहीं लगाते हैं, हम किसी भी भौतिक चीज से अनासक्त नहीं हो सकते हैं। तो अनासक्ति की पूर्णता का मतलब पूर्ण रूप से भौतिक चीजों से अनासक्त होना, यह कब होगा? जब आसक्ति होगी भगवान श्री कृष्ण में। जब तक कृष्ण में आसक्ति नहीं है, कृष्ण के नाम कृष्ण की लीलाओं में आसक्ति नहीं है, तब तक अनासक्ति नहीं हो सकती। वो केवल दिखावा है। जैसे भगवान भगवद्गीता में बताते हैं कि कोई अगर व्यक्ति अपनी कर्मेंद्रियों को वश में कर रहा है लेकिन उसका मन विषयों पे लगा है, तो वो क्या है? क्या बोलते हैं भगवान उसको? मिथ्याचारी से उच्चते, झूठा है, दिखावा कर रहा है। तो उसमें अनासक्ति नहीं है, केवल वो कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरण। मनसा स्मरण किसका स्मरण कर रहा है? इंद्रिय विषयों का। इंद्रियार्थान विमूढात्मा मिथ्याचार से उच्चते। तो इसलिए हमें जब तक कृष्ण में आसक्ति नहीं होती है, तब तक हम लोग अनासक्त नहीं हो सकते हैं। और ये बहुत 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 बड़ा विषय है। कभी अगर भगवद्गीता के श्लोकों में यही विषय आया, तब इस पर विस्तार से इसको समझाएंगे। दूसरा प्रश्न है, गायत्री मंत्र को बहुत से लोग उच्च स्तर पर मानते हैं मंत्रों में, और हम महामंत्र को उच्च मानते हैं। गायत्री मंत्र से दोषों का शुद्धिकरण होता है क्या? यह सही है? इसका इंपॉर्टेंस हम यहां क्यों नहीं अपनाते? अच्छा, प्रश्न ऐसा है कि लोग बाहर के लोग गायत्री मंत्र को बहुत बड़ा मानते हैं, हम लोग क्यों नहीं मानते? हमें भी मानना चाहिए। हाँ, गायत्री मंत्र ये है, एक वैदिक मंत्र है, और हम लोग इसे स्वीकार करते हैं, हम लोग इसे अस्वीकार नहीं करते हैं। और हमारी संस्था में भी इस मंत्र का उच्चारण किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग इस मंत्र का उच्चारण नहीं करते हैं। हमारी संस्था में जो लोग ब्राह्मण दीक्षा ग्रहण करते हैं, वे लोग हर रोज सुबह दोपहर और शाम त्रिकाल, तीन कालों में इस गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। कौन से गायत्री मंत्र का, वो अलग बात है, लेकिन गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि हम लोग गायत्री मंत्र को महत्व नहीं देते हैं। हाँ, इस कलयुग के लिए महामंत्र ही काफी है, जैसा कि कलि संदन उपनिषद में बताया गया है, इति षोडशकम नाम नाम कलि कलमश नाशनम, कि ये जो 16 अक्षरों वाला मंत्र है, ये कलि का नाश करने के लिए बहुत है। तो इसीलिए इसे महामंत्र कहा जाता है। जैसे कई बार उदाहरण दिया जाता है कि आप दवाई की दुकान में अगर जाएंगे तो वहां बहुत सारी दवाइयां आपको मिलेंगी, लेकिन अगर आपको सरदर्द है तो आपके लिए केवल सरदर्द की दवा ही ठीक है। आप हार्ट अटैक की, ब्लड प्रेशर की दवा लेकर क्या करेंगे? लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो दवा नहीं है, वो भी दवा है। इसी तरह बाकी सारे भी मंत्र हैं, ऐसा नहीं है कि वो मंत्र नहीं है, लेकिन कलयुग के लिए एक ही महामंत्र है, और वो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और यही एक मंत्र कलयुग में हम लोगों का शुद्धिकरण, हम लोगों को भगवान की प्राप्ति और जो भी चीज हमें चाहिए, वो केवल यही एक महामंत्र हमें दिला सकता है, ऐसा शास्त्रों का मत है। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी को? अब वैसे आज एक बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है जिसे हम लोग रविवार को मनाएंगे। ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत आनंद आने वाला है। चिला दही उत्सव, जिसका रघुनाथ दास गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु के कहने पर इस उत्सव को मनाया था। बहुत सुंदर उत्सव हुआ था उस समय नित्यानंद प्रभु के उपस्थिति में, और सभी वैष्णवों को इसका आस्वादन किया गया, कराया गया था। तो रविवार को हम लोग इसकी कथा भी सुनेंगे और इसका आस्वादन भी करेंगे। तो आज ये महत्वपूर्ण उत्सव है चिलादही उत्सव, तो इसके विषय में आप लोग अगर सब जानना चाहें तो कृपया रविवार को आइएगा। हरे कृष्ण।
वंदेहं श्री गुरु श्री जुता पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्चं श्रीरूपं शास्त्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सदीवं शाक्तैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णा चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सागनललिता श्रीविशाखान्वितां कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदी गौरभक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रियादैतवदाधान श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्रियादैतवदाधान श्रीवासदि वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगनललिता श्रीविशाखान्वितां हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम राम हरे हरे
हरे कृष्णा
Hare Rama, Hare Rama.
Purusha, Rama.